الحمدللہ ہم نے سورۃ بقرہ پڑھ لی، اب ہم سورۃ آل عمران پہ ہیں۔ تھوڑا سا ہم سورۃ آل عمران کو سورۃ بقرہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ بقرہ میں بہت سارے احکامات تھے جس کے اندر ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے نسخے تھے، لیکن سورۃ بقرہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت اہم سورت ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت بھی کریں گی، اور اسی طرح اس کے فضائل بہت سارے ہیں جو انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور پڑھ بھی سکتے ہیں، سنیں گے۔ تھوڑا سا ان کا تقابل بھی دیکھیے گا۔ سورۃ بقرہ میں یہود کا قصہ تھا، کیونکہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں کہا تھا غیر المغضوب علیہم، ساتھ ہی ہم نے کہا تھا ولی الضالین، تو بس دونوں کے آپ دیکھیے کہ مجموعے کو پہلے سورۃ بقرہ میں دیکھا۔ سورۃ آل عمران کا بنیادی تھیم نصارہ ہیں، کرسچین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران نام کی ایک جگہ سے کچھ لوگ آئے تھے، اس پہ اس کا ابتدائی حصہ شروع ہوا تھا۔ سورۃ بقرہ احکامات سے بھری ہوئی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں ایک بھی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دونوں میں مماثلت دیکھیے کہ دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوگا۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں ہم نے دعا دیکھی، ربنا لا تؤاخذنا، اسی طرح سورۃ آل عمران کے اینڈ پہ بھی دعا آئے گی، اور بدر سے لے کر احد تک کے زمانے میں آئی۔ اس پوری سورت میں ہم جو کچھ کور کریں گے اس کو بس کوئکلی دیکھ لیجئے گا۔ سورۃ آل عمران جو ہے اس کی 200 آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے۔ اس کے بنیادی طور پہ آپ کو دو بڑے حصے دکھیں گے۔ پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 101 تک ہم اہل کتاب کے متعلق باتیں سنیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 102 سے 200، یہ امت مسلمہ سے متعلق احکامات پہ مبنی ہے۔ پوری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کو دعوت دی جائے، اہل کتاب کے خیر سے فائدہ اٹھایا جائے، اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور چوتھی چیز مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اتفاق اور تنظیم۔ یہ 4 چیزیں اس سورت کی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ایک سورت کو سمجھ کے پڑھ لیں مسلمان، تو آج امت مسلمہ کو بہت بڑے بڑے جو مسئلے لاحق ہیں اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک تمہید ہے، پھر آیت نمبر 10 سے 32 تک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے، پھر آیت نمبر 33 سے 63 عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی کو باطل کرنے کے لیے حضرت مریم کا قصہ اور حضرت زکریہ کا قصہ ہے، پھر آیت 64 سے 101 تک اہل کتاب کے شر کی تفصیل ہے، آیت نمبر 102 سے 120 تک خیر امت کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کیسے آرگنائز کیا جائے اس کے لیے ہمیں خوبصورت باتیں بتاتے ہیں، پھر آیت نمبر 121 سے 189 تک غزوہ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ ہے، اور آخری حصہ سورت کا 190 سے 200 تک جو انشاءاللہ کل کے بارے میں آئے گا، جہاں پھر آخری خوبصورت آیتیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے۔ تو سنتے وقت آپ خود محسوس کریں گے بہت لائٹ صورت ہے، بہت ہی اس کا خوبصورت میسیج ہے۔ آئیے ہم اس کو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں پھر کہوں گی کہ عقل سے زیادہ دل کو ساتھ رکھیں، اور ان باتوں کو اللہ کا کلام سمجھ کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ امیجن کریں، ہمیں ایک چھوٹا سا گھر سنبھالنا پڑتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، اسی کے نہیں مسئلے ختم ہوتے ہیں، اللہ پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ کوئی ڈس آرڈر کائنات میں؟ کہیں گندگی، کہیں کوئی خرابیاں نہیں، تو پھر وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اس کو لیں، آپ اس قرآن کو بس اللہ کی بڑائی کے ساتھ لے لیں، تو آپ نے آنے کا حق انشاءاللہ حاصل کر لیا۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا، یعنی یہ پہلی کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی تھیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور اس نے وہ کسوٹی اتار دی جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ایک ایک صفت جو اللہ کی سن رہے ہیں نا، اس کو بس ہائی لائٹ کریں، اور آج سے पिछला भी बात में कर सकते हैं, शायद मैंने पीछे जिक्र किया कि नहीं, जो भी अल्लाह ताला की सिफ़ात और अल्लाह ताला के नाम आपको मिले ना, उनको हाईलाइट करें, और बहुत ही बेहतर है कि अगर आप उसको पिंक कलर से हाईलाइट करें। एक तो मोहब्बत का एहसास होगा, कुर्बत का एहसास होगा, और फिर बाद में घर जाके आगे आगे पलटते हुए सिर्फ उन नामों पर गौर व फिक्र करते जाएँ, आप देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह इस पूरे सफ़र में अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत महसूस होगी। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं, वही तो है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। इस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। आप और मैं वो किताब पढ़ रहे हैं। मिन आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व हुर मुतशाबिहात। इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात यानी हुक्म वाली, ऑर्डर्स, डूज डोंट्स, जो किताब की असल बुनियाद है। क्या पता चला कि कुरान को पढ़ने का असल जो महल है ना, वो ये आयतें हैं कि जिसमें मेरे आपके लिए काम आते हैं। हाँ, कुछ दूसरी मुतशाबिहात भी हैं। कौन सी? जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र है, क़यामत, आखरत। ये आखरत के जहान के लिए, इसलिए इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आयतें दो किस्म की हैं, तो दुनिया के लोग भी दो किस्म के हैं। फ़म्मल्लज़ी नफ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में टेढ़ है। अल्लाह हमें टेढ़ से बचा। वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं, यानी वो दीन से कंट्रावर्शल किस्म के टॉपिक्स ढूंढते रहते हैं ताकि इस दीन को लोगों की नज़रों में मशकूक बना दें, और इनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं। हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं। हाईलाइट करें ज़रा, इल्म वालों की खूबी है। इस सूरत में आपको इल्म का भी जिक्र मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है और ये सब हमारे रब की तरफ से हैं। अमल क्या है कि मुझे आपको कुरान पढ़ते सुनते वक्त जो आयतें भी सामने आए, हर बारे में ये कहना है कि ये सब हुक्म अल्लाह के हैं, ये मौलवियों के घड़े हुए नहीं हैं, और बस हमने इस पर अमल करना है। और सच ये कि किसी चीज़ से सही सबक तो सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। दुआ करें, अल्लाह दानिशमंद कर दे, अक़ल दे दे। और जब अक़ल आती है इल्म के साथ, तो एक दुआ दिल पे आती है और ज़ुबान पे आती है। वो क्या? वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जब तूने हमें सीधे रास्ते पर लगा दिया तो फिर हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना, हमें अपने ख़जाने फैज़ से रहमत अता कर कि तू ही फ़याज़े हकीकी है। आइए हम सब पढ़ते हैं। रब बना ला तुज़िग क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिल लदुन का रहमा इन्नका अंतल वहाब। आप देखिए, कई लोग सीधे सीधे हिदायत पे जा रहे होते हैं, एकदम एक यू टर्न लेते हैं और फिर उतने हिदायत से दूर होते हैं। इसकी फिक्र करें। एहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ जो थी, वो इसीलिए मंगवाई जाती है कि किसी लम्हे भी इंसान सिरात मुस्तकीम से भटक सकता है। हमारी आपकी ज़िंदगी में हमेशा हालात बदलते रहेंगे, मौसम बदलेंगे, मौके बदलेंगे, दोस्त बदल जाते हैं। हर वक्त अपना टेम्परेचर चेक करें, इस वक्त हिदायत के अतबार से किस दर्जे पे हूँ। जब आपको ठंडापन महसूस हो, फौरन अपनी सोहबत को बदलें, अपने आप को चेक करें कि मैं क्यों बदल रही हूँ। परवरदिगार तो यकीनन सब लोगों को एक रोज़ जमा करने वाला है, जिसके आने में कोई शक नहीं। तो हर किसी अपने वादे से टलने वाला नहीं। जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया, इन्हें अल्लाह के मुकाबले में न इनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो दोज़ख का ईंधन बनकर रहेंगे। इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथ ही और इनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका, कि उन्होंने आयात इलाही को छुटला दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इनको पकड़ लिया। नोट करें, अल्लाह की बात छुटलाने का नतीजा पकड़। और हक़ यह है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, इनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हांके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। आज दुनिया में हम जब मुसलमानों को मगलूब देखते हैं तो हम घबराते हैं, हालाँकि थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो मंज़र पलट जाएगा। तुम्हारे लिए इन दो गिरोहों में एक निशान इबरत था, जो बदर में एक दूसरे से नबरदास माँ हुए। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। देखने वाले बचश में सर देख रहे थे कि काफिर गिरोह मोमिन से दो चंद है, यानी दुगना है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। दीदा बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। क्या बताया अल्लाह ने, हेड काउंट नहीं बनो। देखिए वो कहते हैं ना कि मोमिन गिने नहीं जाते तो ले जाते हैं। जो लोग हेड काउंट करते हैं ना, वो दीन की रूह नहीं समझते। आज 1 बिलियन से ज़ायद मुसलमान, उनका ईमान जमा कर लें तो हो सकता है पलड़े में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ईमान उनसे भड़के निकले। तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमें ईमान से लबरेज़ कर दे। क्या चीज़ें हैं जो मुसलमानों के रास्ते की रुकावट हैं, इसका तذکرہ खूबसूरत आयत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन, लोगों के लिए मरगूबातें नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर और चीदा घोड़े और मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। मैं और आप इस दुनिया की रौनकों में खोते हैं। अल्लाह ने दी है मोहब्बत बेटों से, बीवियों से, शौहरों से। क्यों दी? इसलिए कि दुनिया का निज़ाम चले। औलाद से मोहब्बत ना हो तो कोई बाप काम करे, बीवी से मोहब्बत ना हो तो शौहर कभी उसके लिए कुछ करे, इसी तरह माँ को अगर बच्चों से प्यार ना हो तो वो उनके लिए तकलीफ़ें सहे। ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, इसी तरह ये आखिरत का तारुफ़ भी है कि यहाँ तो ये छोटी छोटी मोहब्बतें तुम्हें खुश करती हैं, वहाँ असल होगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो आगे है। याद रखे ये दुनिया आखिरत का मिनिएचर है, ये उसका मॉडल है, ये रिहर्सल है। जैसे ये स्टेज है, रिहर्सल हो रही है, बाद में रियलिटी बाहर होगी। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं तुम इस दुनिया में खो के ना रह जाओ। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, कुल अनबियुकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, कह दीजिए क्या मैं तुमको ख़बर दूँ इससे ज़्यादा की? सुनना चाहते हैं? यानी इस दुनिया से भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं कोई? कौन सी? कहो मैं तुम्हें बताऊँ इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है? जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें, यानी दुनिया में नाफरमानियों से बचें, बचते बचाते ज़िंदगी बसर करें, उनके लिए इनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इमेजिन करें अपने आप को जन्नत में ले जाएं, वहाँ इन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियाँ इनकी रफ़ीक होंगी, वहाँ की बीवियाँ और शौहर पाक होंगे, गंदे ख्यालात नहीं, एक दूसरे से गलत चीज़ें शेयर करने वाले नहीं, और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैयों पर गहरी नज़र रखता है। कौन लोग हैं जिनको ये सब मिलेगा? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिशे दोज़ख से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं, फरमाबरदार और फैयाज़ हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफरत की दुआएँ मांगा करते हैं। क्या पता चला इससे? ये पता चलता है कि कुछ सिफात इस दुनिया में पालें, अपने अंदर मेहनत कर लें तो वहाँ अल्लाह क्या देगा, क्या कुछ है जन्नत में, कोई तसव्वुर आता? सुनना चाहते हैं? आइए सुनते हैं। अपने तसव्वुर में जन्नत में लेके जाएं ख़ुद को, वहाँ क्या कुछ होगा, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन में भी वो जन्नत नहीं आ सकती। हमने सिर्फ नाम सुना है ना, तलब नहीं।
Perched on a throne near a stream so serene and exquisite, a scene you've never seen, yet you still dream of more. Gone is pain, gone is fear, gone is grief, gone are tears. Idle speech you shall never hear, and the prophets make up your social sphere, and more. The martyrs, righteous and the truthful too, you are from them and they from you. They held tightly to what they knew is true, and to join them, you did too. There's more. Maidens chased to restrain their gaze, lost in a glance for days and days. Fun and frolic as a child plays, where the breath that leaves your lips is praise of the one who gave you more. Imagine you and your father with age is the same. Imagine showing off your book with no shame. Imagine nice people sahaba their stories to entertain. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, knowing your name, what could be there more? Gardens underneath which rivers flow, a goal so far and yet so close, a journey worth taking for those who know. Tell me, do you not wish to go for more? For all the bounties and all the grace, all the sights and the smells and the tastes will be forgotten without a trace, as if frozen in time and space, when you see his face. What an excellent master of a miserable slave. you forgot, and he forgave. He gave you guidance, and you still strayed. You asked for mercy. That he gave, and more, and more, and more.
तो ये है जन्नत. दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको जन्नत दे दे. इतनी प्यारी जन्नत को पाने के लिए छोटी सी कुर्बानी देनी पड़े तो क्या बड़ी बात है. आगे इल्म वालों की शान है. कुरान में अगर कोई और आयत ना भी होती ना इल्म की खूबी में तो ये आयत काफ़ी थी. कौन सी आयत? नंबर 18. शहीद अल्लाहु अल्लाह. अल्लाह ने ख़ुद शहादत दे दी कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं, और यही शहादत फरिश्तों ने और सब अहले इल्म वालों ने दी. वो इंसाफ पर कायम है. इस ज़बरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़े कोई खुदा नहीं. अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है. यानी अल्लाह के यहाँ जो कबूल चीज़ है वो इस्लाम है. इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके इन लोगों ने इख्तियार किए, जिनको किताब दी गई, इनके इस तर्ज अमल की इसके सिवा और कोई वजह न थी कि उन्होंने इल्म जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया. यानी फ़िरकेबाजी एक दूसरे पर बड़ा बनने की वजह से हुई. और जो कि अल्लाह के काम और हिदायत की ताज से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती. अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया. क्या हमने किया? खुद से पूछें. आप देख रहे हैं कितना इताअत की बात है, सुन के मानना. फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी इताअत और बंदगी कबूल की? अगर की तो हिदायत पा जाओगे, अगर खिद की तो वो राह रास पागे, और अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी. आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामलात देखने वाला है. इसको हाईलाइट करें. अल्लाह ताला की नज़र हर मामले पे है. जो लोग अल्लाह के काम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगंबरों को ना हक कत्ल करते हैं, और ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं जो खल्के खुदा में से अदल और आस्ती का हुक्म देने के लिए उठें, इनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो. ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखरत दोनों में ज़ाया हो गए, और इनका मददगार कोई नहीं. तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला, इनका हाल क्या है? युदाउना इला किताबिल्लाह. ये अल्लाह की किताब की तरफ पुकारे जाते हैं ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला करे. तो इनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है. इनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं कि आतिशे दोजख तो हमें छुए तक ही नहीं, और अगर दोजख की सज़ा हमको मिलेगी तो बस चंद रोज़. इनके खुद साख्ता अकीदों ने इनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा. याद रखिए, जहाँ दीन में कोई नया इजाफा आएगा ना, असल दीन लोगों को बोझल लगेगा. यही यहूद के साथ हुआ, यही आज हम मुसलमानों के साथ हो रहा है. मगर क्या बनेगी इन पर जब हम इन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है. अपनी फिक्र करें, क़यामत के दिन मेरे साथ क्या हो रहा होगा? इस रोज़ हर शख्स को इसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा, और किसी पर जुल्म ना होगा. क्या मैं तैयार हूँ अपनी कमाइयों का बदला लेने के लिए? आगे फिर दुआ है. और आपको तो सूरत आल इमरान में बहुत सारी दुआएं हैं, और एक से एक भड़के खूबसूरत दुआ. कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर. कहो खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है. बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है. रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में. जानदार में से बेजान को निकालता और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है. फिर हम किन के पीछे फिरते हैं? ये वो आयतें हैं कि जो बंदे को सबसे बेनियाज कर देती हैं. आप देखिए, आपका कोई रिश्तेदार बहुत अमीर हो ना तो आप नज़रें लगा लेते हैं, कोई मुश्किल आई ना ये मेरी मदद करेगा. फिर वक्त पे शायद हो सकता है वो मदद कर ही ना सके, वो ख़ुद उस वक़्त किसी मुश्किल में पड़ा हो. आप कहते हैं मेरा फलां सदर वज़ीर, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे घर वालों के. पता चला आप जब मुश्किल में पड़े उससे एक दिन पहले ही वो ले आउट हो गए. एक हस्ती है, इससे बंधें, इसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें, और अल्लाह ताला मेरे इस टूटे हुए तार को जोड़ दे. मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक और दोस्त हरगिज़ न बनाएं. यह अल्लाह का मशवरा कुरान में है. वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کریں, یہ دو دفعہ آئے گی ابھی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو, بڑی طاقتوں سے کیوں ڈرتے ہو, اللہ سے ڈرو اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی, لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہر حال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے, انتظار کریں ہم اس کا, کون سا, جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا. اپنے اعمال کو ذرا ناچتے بھدکتے آتا ہوا دیکھیں, خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا, کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, سچی بات ہے ہم نہیں ڈرتے اللہ سے, تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اللہ ہمیں اپنا ڈرتے اپنے لیے دعا کریں. اے نبی, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو, آپ بھی پوچھئے خود سے, کیا میں اللہ سے محبت رکھتی ہوں, اس کا اظہار کیسے ہے, تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اللہ سے محبت کا اظہار, نبی کی اتباع. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو, پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. کیا پتہ چلا کہ جو رسول کی اتباع نہیں کرتے اللہ کو ان کے محبت کے دعوے کا یقین نہیں ہے. آپ سب دیکھیں گے صورت میں بھی خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی بہت بات آ رہی ہے.